તારીખ 29/8/1991 શ્રી સમયસાર કળશ ટીકા શ્લોક નંબર 4 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 4 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
निर्विकल्प अनुभव होता है तब સ્પષ્ટ થયા એસા લગતા હૈ કે એક વિકલ્પ મેં ચાહે પ્રજાસિંહ નહીં કહા થા યા પર્યાયાસિંહ નહીં કહા થા અનુભવ કે પહેલે ઉસ વિકલ્પ મેં એસા જૈસા જો અનુભવ થા કે પર્યાય દૂજે મેં તો પર્યાય કા પર કામ હો જાતા પર્યાય કા પર કામ કરતા
એવા વિકલ્પો જો
સ્વપ્ન ક્યાં લગતા હૈ સ્વપ્ન તરીકે સત્ય હૈ લેકિન સ્વપ્ન મેં જો ભી ઘટના ઘટી હૈ વો સબ ઝૂઠી હૈ એસા નય વિકલ્પ નય વિકલ્પ કે રૂપ મેં સત્ય હૈ ફિર ભી એસા આત્મા કા સ્વરૂપ પર્યાય મેં હિંસા નહીં અગર વો પર્યાય સ્વરૂપ હોતા તો સ્વીકાર્ય રહેતા નહીં પર્યાય કા નાશ હો જાતા ઇસસે યે માલૂમ પડતા હૈ કે વો દ્રવ્ય રૂપ હૈ ના પર્યાય જૈસા હૈ વૈસા કે વસ્તુ તો જૈસી હૈ વૈસી વસ્તુ કા ગ્રહણ હોગા ઓર જબ વસ્તુ કા ગ્રહણ હોગા તો અનુભવ હોગા
કોઈ પણ વસ્તુ ને જોવી એ સ્વભાવ દ્રષ્ટિ થી જોવાની
વસ્તુ કા સર્વ સ્વભાવ વસ્તુ મેં અગર વસ્તુ કા સ્વભાવ કો બાદ કર દિયા જાય નિકાલ દિયા જાય
સ્વભાવ નિકાલ દિયા તો વસ્તુ હી નહીં
રહે વસ્તુ કા સ્વભાવ હોય વસ્તુ કા
સ્વભાવ એ ધર્મ સ્વભાવ એ ધર્મ
સ્વભાવ હૈ વૈસા હી ધર્મ જૈસા સ્વભાવ હૈ વૈસા હી ધર્મ शत्रु का आरोप इसलिए खुद को तो उसका आरोप और कैसा श्वास प्रदान है श्वास का मैं श्याल वाल अस्थान विकास स्वरूप पीछे कहा है वही है चिन्ह का पीछे मैंने भी बारवा आदि का चारवाद अधिकार इसलिए कहा गया चारवाद अर्थात अधिकार कहा है वही है अंक में अंक में चिन्ह लिखा रहता है भावा से इस प्रकार है कि जो कुछ वस्तु का है वह तो निर्भेद है न द्रविता भेद न पर्याय का है न गुण का भेद वस्तु जो है वो तो जो कुछ वस्तु है वो तो निर्भेद है तो निर्भेद को वैश्व को एक वह वस्तु का तो वचन के द्वारा कहने पर ऐसी वस्तु को वचन द्वारा कहने से जो कुछ वचन बोला जाता है वही पक्ष रूप है वो तो किसी एक धर्म को किसी एक गुण को किसी एक विशेषता को बताता है वचन इसलिए एक पक्ष को वो प्रस्तुत करता है बाकी सब जो धर्म है वो अप्रस्तुत रहता है जैसे द्रव्य को बताया तो पर्याय प्रस्तुत नहीं है पर्याय को बताया तो द्रव्य में अप्रस्तुत है इसलिए पक्ष रूप है तो वो पक्ष रूप है ऐसा दिखाने के लिए श्याप पद को लगाने में आता है किसी एक पक्ष से वस्तु ऐसी है ऐसा जीन वचन में हर जगह सुनते हैं क्योंकि वस्तु इतना अनंत गुण धर्म संपन्न है कि एक वचन में कहने का वचन में कोई सामर्थ्य नहीं एक वचन में पूरी वस्तु कह सके वस्तु को कहने को जाएगा तो एक पक्ष मात्र कहने में आएगा बाकी सब पक्ष कहने में नहीं आएगा इसलिए आप मैंने कथनचित रूप से वस्तु ऐसी है ऐसा हर जगह समझ लेना जितना नजीब हो सकता तब वचन में ये बात समझ लेना और कैसे हैं आसन हो गए कि स्वयं मान स्वयं मैंने स्वयं बने अपने पुरुषार्थ से अपने उपादान से जिन्होंने वमन कर दिया है वमान है वो मैंने विख्यात करा विपरीत बना का दूसरा नाम विख्यात करे विख्यात का दूसरा नाम जिसने विपरीत पना को वमन कर दिया है कैसा तो जीन वचन से रमन से आसन भव्य कैसा है कि जीन वचन में जो रुकते हैं जीन वचन में रमते हैं कि मतलब क्या कि जीन वचन का केंद्र स्थान जो शुद्ध देव का स्वरूप है उसमें जिसकी रमणता है निर्विकल्प स्वरूप जीव वो जीन वचन का केंद्र स्थान है उस जीव स्वरूप में जो रमणता करते हैं वो जीव शास्त्र पढ़ते हैं उसको जिनमें से श्रीरमन से ऐसा नहीं कहते शब्द के अर्थ अनुसार वहां बात नहीं है अभिप्राय अनुसार शब्द का अर्थ तो उसमें निकलता है जीन वच श्रीरमन से मैंने जीन वचन में जो रमते हैं जीन वचन तो शास्त्र है तो शास्त्र में रमते हैं ये बात लेकिन जीन वचन का केंद्र स्थान जो शुद्ध जीव का स्वरूप है उसमें जो रमणता करते हैं वो वास्तव में जीव में
वचन अनु करते हैं अनुभव रूप से वचन अनु करते हैं अनुभव रूप से
हाँ वो जीव का स्वरूप वचन अगोचर है लेकिन अनुभव गोचर है, वचन से अगोचर है लेकिन अनुभव से
गोचर है।
अनंत संसार जीव के घूमते हो ही जाता है, आवाज जो लिखते हैं बहुत सुंदर लिखता है। चौथे कलश का जो आवाज है बहुत बढ़िया बात लिखा है कि अनंत संसार एक दृष्टिपात करता है, जीव के परिभ्रमण और जीव के परिणामों पर एक दृष्टिपात करते हैं और कहते हैं कि जीव के अनंत संसार जीव के धन से हो जाता है। अनंत काल में परिभ्रमण करने वाले जीव ने अनंत संसार अनंत काल के संसार का परिभ्रमण किया है। वे संसारी जीव के भव्य राशि है, यानी एक बहुत से जगत के जीव है परिभ्रमण कर रहे हैं, उसमें कितने भव्य हैं कितने अनंत अभव्य है और अनंत भव्य है। राशि में समूह उसमें अभव्य राशि जीव विकार ही मोक्ष जाने के अधिकारी है। स्वभाव एक सा होने पर भी केवल ज्ञान के अनुसार ये बात प्रसिद्ध हुई है के जितने अभव्य जीव हैं वो कभी भी मोक्ष में जाने वाले हैं, और संसार के दुख में हमेशा दुखी 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 ही रहेंगे, ये इनकी हालत रहने वाली है। भव्य जीव में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य है, भव्य जीव में भी छोड़ नहीं जाएंगे, सभी भव्य नहीं जाएंगे, कितने ही भव्य जाएंगे, अनंत अनंत जाएंगे, अनंत नहीं भी जाएंगे, ये भी अनंत है। इसलिए संसार में भव्य और भव्य का अनंत समूह हमेशा के मुकाबले होने वाला है, लेकिन भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने के योग्य हैं, कितने मैंने हमारे जैसे कितने जीव भी मोक्ष जाने के लिए ऐसा इसको मालूम कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, हमको क्या मालूम हमारे अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारी आत्मा यह कहती है कि जो भव्य जीव मोक्ष में जाने वाले हैं इसमें हम हैं, हम इसमें कहेंगे जो मोक्ष में
जाने वाले
हैं। ये कहीं देखिए कैसे चला कि ये तो आत्मा अंदर से बोलता है, भले ही आत्मा को भाषा नहीं है लेकिन जो लगता है वो माई है, जो लगता है हमको ऐसा लगता है, क्यों मिलता है इसका कोई कारण नहीं, इसका कारण हमारा द्रव्य, इसका कोई कारण नहीं, द्रव्य को कोई कारण देने की जरूरत नहीं, द्रव्य इसको कह रहे हैं जिसको सिद्ध करने के लिए इसकी जरूरत नहीं। तो भव्य जीवन में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य है, नहीं जाने योग्य वो बात नहीं किया समझ लेना, पत्ते भी आएगा तो कुछ जाने वाले हैं ना, इसलिए बात देखा ही नहीं कि अनुसार हम नहीं जाएंगे कितने जाने वाले हैं, हम भी जाने वाले और अब उसके मोक्ष पहुंचने वाला काल के मार्ग है, जो भी जीव मोक्ष में जाने वाले हैं उनके काल निश्चित है, परिमाण मैंने मान मैंने भावना नापना उसका नापा हुआ है, प्रमाण ज्ञान में उसकी प्रमाणित होता है, की बात है कि उनके लोग पहुंचने का काल परिमाण है, मैंने काल निश्चित है, परिमाण मैंने नाप करके वो निश्चित हुआ उसका भी बना ये बात ये जीव इस काल में मौन भूष पहुंचेगा तो उसका क्रमबद्ध हो गया क्या, नियमबद्ध हो गया क्या, इसका विवरण कि यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा ऐसे नौ केवल ज्ञान में है, सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसे नौ है, सर्वज्ञ का सब पक्ष हुआ कहता है, तीन काल में ऐसा कोई काल नहीं है जिस काल में सर्वज्ञ की विधिमानता न हो, अरे ऐसा कोई काल नहीं है कि जिसमें सम्यक दृष्टि न हो, जिसमें साधु महाराज न हो और जिसमें अरिहंत देव न हो और जिसमें सिद्ध परमात्मा न हो, पांचों परमेश्वर और सत्पुरुष और सत्शास्त्र तीनों काल में है, 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 नहीं है ऐसा कोई काल है ही नहीं, कुछ क्षेत्र में कुछ काल तक नहीं हो गए वो बात अलग है, जगत में नहीं है सारा जगत में ऐसा कुछ काल नहीं है, कहीं भी चेक तो है सभा हुई, इसलिए योग जीव इतना काल कितने पर मोक्ष जाएगा, किसी कोई भी जीव इस काल में मोक्ष में पहुंचेगा इसका नाम केवल ज्ञान में आगे कहें पीछे से नहीं है, लेकिन अनंत काल पहले से ही है, अनंत काल पहले से ही बात
है, बच्चे ये जीव संसार में घूमता बनता जा रहा है तो भूतल पड़ा होता है
हजार से
हमारा वहाँ जी अगर नॉन केवल ज्ञान है बात नहीं, वहाँ जी संसार में भ्रमते भ्रमते यदि अर्ध उद्वल परावर्तन मात्र रहता है तभी समय मतलब क्या हुआ कि केवल ज्ञान ने जान लिया है कि ये जीव कितना काल के बाद मोक्ष में जाएगा, तो उसका अर्ध उद्वल परावर्तन के अंदर का चला गया था कि समय पहुंचेगा, इससे पहले कि समय बाकी तो समय को उभरे और अंतर हम लोग समय के केवल ज्ञान लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये तो सबसे कम हुआ अधिक से अधिक ये और जब उसके परावर्तन काल के अंदर में वो आ जाएगा मोक्ष काल मोक्ष के पहुंचने के पहले यदि उसको समय हो सकता है इसके पहले उसको समय दर्शन होता ही नहीं, तो ये सूजन में या कोई भय में रहने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कहता हूँ जिसको भव्यता का परिपाक समीप आता है उसकी आत्मा अंतर में से ये पुकार करती है, और जिस जो जीव जिस स्वरूप के आश्रित पूर्ण होने वाला है होती है कोई लागू होता
नहीं,
जिसमें कार्य कार्य नहीं लागू होता उसका नाम काम शक्ति। वरना क्यों ऐसी बात को देखे समझने लायक कोई चीज है तो ऐसी बात क्यों लेते हैं हमारे जीव की आदत बन गई है कृत्रिम पुरुषार्थ करने की। मैं ऐसा करूं मैं वैसा करूं, कर्तृत्व बुद्धि में पड़ा हुआ उनको कर्तृत्व पुरुष करा रहा है, कर्तृत्व पुरुष कुछ होने वाला है। जितना भी मेरा कर्तृत्व का कमाल है वो बिल्कुल व्यर्थ है, मिथ्या है, कोई इससे सफलता नहीं होने वाली। के लिए मतलब ये भी नहीं उदासीन हो जाए, उनका जो व्यायाम इसमें परिणाम हो जाएगा उसको भी करते हैं उसमें विकाल बुद्धि नहीं माने, क्योंकि काल अध्याय उनके करते हैं वो करते रहे वो बात विकाल अध्याय है तो तेरे प्रयत्न आ रहे हैं तो बात को सभी पर्याय काल अगर काल बुद्धि शरीर में समझ में आ रहे तो क्या का दर्शन हो जाएगा, एक भी पर्याय को समझ में नहीं आ रहा।
भविष्य में विचार नहीं करता वर्तमान में,
जो जीव अपने वर्तमान को मानता है उसकी काल बुद्धि पकड़ नहीं सकता। अपने वर्तमान को जो संभाल लेता है उसके काल बुद्धि एक काल बुद्धि है तो उसको काल बुद्धि की कोई समस्या रहने वाली। मैं वर्तमान में ही ज्ञान मात्र हूं ऐसा अपना स्वरूप को जिसने संभाला उसकी उसी को काल बुद्धि की है, तो काल बुद्धि का विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। काल बुद्धि किसको कहते हैं मैं नहीं कहते हैं कोई जरूरत उसको नहीं। सिद्धांत एक ऐसी चीज है कि या तो जीव को हित हो जाए यथार्थ रूप से ग्रहण कर, अगर यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं किया तो अहित भी हो जाएगा उसके सिद्धांत के द्वारा। लेकिन अपने हित में वो कैसा काम में आता है किस तरह से काम में आता है हमें सिद्धांत को ग्रहण करना है किस प्रकार से ग्रहण करना है तो न काल बुद्धि चंबल प्रसन्न भी हो जाएगा। उसको काल बुद्धि कहलाता है यद्यपि सम्यक रूप जीव ग्रहण करता है तथा काल बुद्धि के बिना करोड़ उपायों के आए तो भी जीव सम्यक रूप परिणाम योग्य नहीं ऐसा नियम है। जो कर्ता बुद्धि का पक्षात वाला है उसकी न्याय नहीं करेगा, जिसको पर्याय में करो 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 होता है और उसी को जो पक्षात समझता है उसको भी न्याय की दिल पड़ जाएगी। क्यों कि करोड़ उपाय किए जाए तो भी सम्य करोड़ परिणाम नहीं नियम बदवा कर्तृत्व वाला कर्तृत्व वाला करोड़ उपाय करे तो भी सम्य नहीं होगा। सहजता से जो पुरुषार्थ है उससे तो जीवन का कार्य करने वाला है। સ્વચ્છતા કા તો નામ ભી નહીં કોઈ સ્વાદ મે હૈ ના સ્વચ્છતા કા નામ સે નહીં કરતા હૈ કિછે એકતા કા કિસકે હું જાનના કે સમય છો વસ્તુ યસ મે પાલે નહીં ચાલે જે તો મે કરતું તો રૂપ યસ મે પાલે
મેડમ
સ્વાદ યસ મે પાલે નહીં હૈ એસા નહીં કહા સ્વચ્છતા કા હૈ ઓર પુષ્કા કા સમય પુષ્કા કા રૂપ હૈ મે જો પ્રશ્ન સ્વરૂપ ક્યા पुरुषार्थ का स्वरूप वो है कि जीव में विभिन्न नाम की शक्ति है गुण है उसका अंतर्मुखी स्वाभिमुख जो परिणाम है कि जिस कारण से सभी गुणों की पर्याय प्रकृति जैसा स्वरूप है ऐसी समझा जाए स्वरूप रचना वो सभी पर्याय की स्वरूप भूत रचना में जिसका निमित्त हो गए दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जो परिणाम का स्वरूप के साथ योग होने का अंतर्मुखी प्रकार है उसमें एक आवेग जो है आवेग का एक फैक्टर है तत्व है उसको पुरुषार्थ कहते हैं संवेदी जिसको कहने में सम्यक वेग फोर्स होता है वेग होता है जोर होता है संवेदी अब विधि गुण तो हमेशा परिणाम किसके रहते का संसार अवस्था में मिथ्या अवस्था में जोर बहिर्मुख भाव में वेग आने का है आप पुरुषार्थ कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ तो है लेकिन सम्यक है तो आत्मा को शांति होगी ऐसा है तो आत्मा को अपने पुरुषार्थ से दूर होगा ये जो मधुके होने का पुरुषार्थ पुरुषार्थ बिना का जगत में एक भी जीव नहीं है नहीं करता हो एक समय के लिए इसलिए पुरुषार्थ सही पुरुषार्थ कैसे हो गए इसलिए उनकी जानकारी छूट जाए लेकिन जानकारी जानकारी है पुरुषार्थ पुरुषार्थ है क्योंकि ज्ञान जो के पर्याय लेकिन सही जानकारी पुरुषार्थ को उत्तम होने इसलिए ज्ञान पुरुषार्थ का उत्पादन में आया है
कार्य करवाने जो वेग आवे जैसे पुरुषार्थ के
परिणाम में अंदर जो वेग है परिणाम में पर जो जोश वेग है पक्षी के ऊपर शांति पड़ी तो क्या पुरुषार्थ जे शांतपणा ने जे दृढ़ता मक्कमता है अशांत नहीं करता पुरुषार्थ કોઈ જગ્યાએ વેગ વાળો ન દેખાતો પુરુષાર્થને એને જોવાની દ્રષ્ટિ
પરંતુ ચાલ્યો જીન વચનમાં રમણ રમણતાનું ઓર આખરીમાં જ્યારે પૂરો કર્યો ત્યારે લખ્યો કે વિપરીતતાને વમન કરી નાખ્યો તો પછી આ નીચે જઈને આ વાત રાજવીર સાહેબ આ વાત લખી પુરુષાર્થનું સ્વરૂપ જે દર્શાવ્યો તમે શું કહેવા માંગે છે? આ ગાથા સાથે શું અનુસંધાન છે? કાશ સાથે
જીવતાનાદી
નો છે
સિદ્ધાંત હૈ ભી પર્યાય કે કૃતત્વ કો તોડાને કે લિયે હૈ
દ્રષ્ટિકોણ થી જોવા તો
समय शनि के प्रसाद हुए ही शनि के कारण होती है, क्यों उसको अपने से जोर आता है, अपना हित के लिए जोर क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों, कोई ऐसा
पुरुषार्थ का सही स्वरूप नहीं ज्ञात होने से, पुरुषार्थ का सही स्वरूप ज्ञात नहीं होने से ये सब बातें कर्मबद्ध में या ऐसे जो
सारी लिंग बैठ जाती है। एक बात नहीं बैठने
कुछ करने का नाम, कुछ करने का नाम पुरुषार्थ, ऐसी बात नहीं,
नहीं वो पुरुषार्थ का स्वरूप ही नहीं है। अगर तो पुरुषार्थ का स्वरूप मानता है वो
गलत समझता
है, अथवा एक बात ना बैठी तो बड़ी बात नहीं बैठी, ये वो
एक बात नहीं बैठी, एक भी बिना विकल्प स्वरूप में शुद्धता का विकल्प नहीं था, लेकिन लक्ष्य में जोर बढ़ गया, प्रकाश बढ़ गया, सहजता से स्वरूप हो गया। इतनी सहजता से जब स्वरूप जुड़ा जाता है तो केवल ज्ञान क्यों नहीं देने सकता, और बड़ी बड़ी के लिए वो बस इसमें स्थिर जब मैं सहज मात्र में रहता हूं तो स्थिर ही रहेगा, खत्म हो जाएगा, मैं कौन से बड़ी बात है। जोर भी आता है काम प्रकार ऐसा विकल्प भी है, सरकार इनका भी अपनी दृष्टि का भी काम नहीं होता है।
स्वरूप
है वो अन्य मतलब क्या, इसका मतलब क्या, मेरी भावना इसी मन में केवल ज्ञान थी तो अनुचित नहीं है भावना, लेकिन कार्य तो प्रारब्ध अनुसार होता है, उसका विचार क्या करते भावना और चीज है, कार्य कुछ और चीज है, वस्तु को भावना के अनुकूल तस समय की योग्यता और काल लब्धि एक अर्थ है, और तब समय की योग्यता स्वरूप लक्ष्य ज्ञान लिए अपनी
जी
हाँ।
भी
बिना कारण करोड़ उपाय किए जाए तो पानी भरना है तो सुविधा हो कोई ऐसा विचार करें कि हमको सीधा में से सीधा ही सीधा करना है बीच में आधा दिए बिना ढला आड़ा होकर के लिए सीधा होगा उल्टा है वो सीधा आड़ा होगा नहीं है ढूंढा में से सीधा होने में आ रहा है इसका नाम का जीव का बड़ा है तो सीधा उसको होना है रास्ता तो विज्ञान है साइंस है विज्ञान का एक
आड़ो करवो पड़े छे एमां शू बताऊं
આડો થઈને સીધો થાય
બરાબર એમાં શું
તો કોઈ એમ કે નહીં આડો હોવો જોઈએ મારે તો સીધો થઈ સીધો કરવો કેવી રીતે થાય કરવા એમ જે મુદ્દો ઉભો છે તમે કે એકવાર આસપાસ કેવો જ્ઞાન નહીં છે કેવી રીતે કેવી રીતે થાય આડો થઈને સીધો થાય તો વચ્ચે જે પર્યાય ઉભે કેવળ જ્ઞાન જેવા થતી એના સ્વકારમાં આવે ને આડો થઈને ઉભો
સ્વકાર
નિયમ હૈ વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ જાનના કે સમય તો વસ્તુ યથાદિ નહીં મળને વાલી મળને વાલી ઇસકા મતલબ કૃત્રિમતા છે और जो वस्तु का स्वरूप अनादि अकृत्रिम है तो उसकी प्राप्ति में भी अकृत्रिमता ही होनी चाहिए અસમાધાન
નહીં
તો